आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 60% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वोटों की गिनती हफ्ते के रोज की जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में अब पूरा शुमाल मशरक खत्ता तरक्की की राह पर गामजन है। प्रयागराज के महाकुंभ में जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 आज से शुरू हो रहा है। फ्रांस की पार्लियामेंट में बुध के रोज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई, जिसके बाद 2025 के बजट को अपनाने की राह हमवार हो गई है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एकरोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। और आलमी टेबल टेनिस सिंगापुर स्मैश में आज क्वार्टर फाइनल में मानव ठक्कर और मनुष शाह पर मुश्तमिल भारत के मर्दों की डबल्स की जोड़ी का सामना फ्रांस की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। 70 अराकीन पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग कल शाम पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई। तकरीबन 60.42% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जिले में सबसे ज्यादा 66.25%, जबकि जुनूब मशरक़ी दिल्ली में सबसे कम 56.16% पोलिंग दर्ज की गई। शाहदरा जिले में 63.94% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। शुमाली दिल्ली में 59.55%, जबकि शुमाल मगरबी दिल्ली में 60.70% पोलिंग दर्ज की गई। कल जिन अहम रहनुमाओं की सियासी किस्मत ईवीएम में बंद हुई है, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, बीजेपी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश बिदुड़ी, कांग्रेस के देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा शामिल हैं। कुल 699 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इंतखाबी कमीशन ने कौमी राजधानी में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए थे। इंतखाबात में पैसे की ताकत के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए बिल्कुल बर्दाश्त न करने का तरीक़ेकार अपनाया गया था। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने 7 जनवरी को दिल्ली असेंबली तारीखों के ऐलान के बाद से 236 करोड़ रुपये जब्त किए। कल ही तमिलनाडु में इरोड ईस्ट असेंबली सीट और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर असेंबली हल्के के जिमनी चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। इरोड ईस्ट असेंबली हल्के में तकरीबन 67.97%, जबकि मिल्कीपुर असेंबली हल्के में तकरीबन 65.35% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि पूरा शुमाल मशरक़ी खित्ता वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में तरक्की की राह पर गामजन है। वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा सरकार में 2,800 से ज्यादा तकरर नामों की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने उजागर किया कि त्रिपुरा की सरकार किसी तफरीक, सिफारिश या बदनवानी के बगैर मुकम्मल शफाफियत के साथ मुलाजिमतें फराहम कर रही है। वजीर दाखिला ने इस बात को उजागर किया कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रियासत में अमन व अमान कायम करने के लिए त्रिपुरा में 3 समझौते किए हैं। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसियों ने जमीनी तौर पर महदूद रियासत त्रिपुरा को जमीनी राबतों वाली रियासत में तब्दील कर दिया है।
आजादी के 75 साल होने के बाद एक और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा शासन और इसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का शासन, इसमें विकास के मामले में हमारा पलड़ा भारी, और इसीलिए मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूरे देश के सामने रखने का काम किया है। एक जमाने में लैंड लॉग स्टेट के नाम से त्रिपुरा को जाना जाता था, आज लैंड लिंक स्टेट के रूप में जाना जाता है।
अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में मुसल्ला ग्रुपों का सफाया कर दिया गया है, उन्होंने खुद सुपुर्दगी कर दी है और वो असल धारे में शामिल हो गए हैं। जनाब शाह ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत ने मुस्तकिल रिहाइश, तालीम, सेहत, देखभाल, रोजगार के मौके फराहम करके ब्रूरंग लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाई है।
त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं। बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि त्रिपुरा में एक भी हथियारी ग्रुप आज उपलब्ध नहीं है, सभी लोग सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं।
इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की। जनाब वैष्णव ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें टेक्नोलॉजी को जमहूरी तर्ज पर ढालने में रहनुमाई की है और जनाब ऑल्टमैन ने वजीर आजम के नजरिए की सताइश की है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि उन्होंने ओपन एआई के सीईओ के साथ इंतहाई खुशगवार माहौल में बातचीत की। जनाब वैष्णव के मुताबिक मुलाकात के दौरान पूरे एआई निजाम जैसे जीपीयूज मॉडल और ऐप बनाने पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें ओपन एआई तीनों शोबों में इश्तराक के लिए तैयार है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यरमे बकीव के साथ मीटिंग की। डॉ जयशंकर ने उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम में भारत के काम और एक महफूज एससीओ बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया है। डॉ जयशंकर ने मिस्र के वजीर खारजा डॉ बदर अब्दुल्लते से भी टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते के हालिया वाकयात और हालात और भारत और मिस्र के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। यूनान के वजीर खारजा जॉर्ज गिरेपेट्रेटिस भारत के चार रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर के साथ मीटिंग करेंगे। उनके इस दौरे से भारत और यूनान के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में इजाफा होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 मुनाकिद किया जाएगा, जिससे मुल्क भर से 15,000 से ज्यादा कबायली हिस्सा लेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस 6 रोजा तकरीब के दौरान हर कोई कबायलियों की तहजीब और रिवायात के तहफ्फुज़ का अहद करेगा। बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश के साल 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 के तहत युवा कुंभ मुनाकिद किया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के इंतजामी सेक्रेटरी अतुल जुग ने कहा कि युवा कुंभ में मुल्क भर के 8,000 से ज्यादा कबायली नौजवान शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि कबायली उमूर के मरकजी वजीर दुर्गादास उइके तकरीब का इफ्तिताह करेंगे।
इस युवा कुंभ में देश के सभी राज्यों से 8,000 से भी अधिक युवा प्रयागराज में पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में आदरणीय और श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी उपस्थित रहेंगे। उनके ही आश्रम के कैंपस में ये कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में केंद्र के जनजाति मंत्री दुर्गादास उइके जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
तकरीब के दौरान कबायली बिरादरी के लिए बेहतरीन काम करने वाले मुख्तलिफ रियासतों के 25 नौजवानों को इनामात से नवाजा जाएगा। इस दौरान कबायली बिरादरी से मुतालिक एक नुमाइश भी मुनाकिद की जाएगी और मुल्क भर से 120 सकाफती डांस ग्रुप अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इस दौरान वो त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी भी लगाएंगे। प्रयागराज से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में बुध के रोज अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई, जिसके बाद 2025 के बजट को अपनाने की राह हमवार हो गई है। इससे पहले वजीर आजम फ्रेंकोइस बायरोव ने खसूसी आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कानून साजों के वोट के बगैर बजट बिल की मंजूरी का रास्ता अपनाया, जिसके नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी। नेशनल असेंबली में सिर्फ 128 कानून साजों ने तहरीक के हक में वोट दिया। ये तादाद इसे मंजूर करने के लिए दरकार 289 वोटों से बहुत कम है। इससे कबल सोशलिस्ट और इंतहाई दाएं बाजू के नेशनल रैली के कानून साजों दोनों ने इस तहरीक की हिमायत न करने का ऐलान किया था। फ्रांस के आईन के मुताबिक तहरीक के नाकाम होने से साल 2025 का बजट खुद ब खुद कानून में तब्दील हो गया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके मुताबिक खवातीन के खेलों से मर्दों को अलग कर दिया गया है और ट्रांसजेंडर खवातीन और लड़कियों को भी खवातीन के खेलों में मुकाबले से ममनू करार दिया गया है। हुक्मनामे में एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि वो इन स्कूलों को फराहम की जाने वाली विफाकी फंडिंग वापस लें जो इसकी तामील से इनकार कर दें। हुक्मनामे में महकमे खारजा को भी हिदायत दी गई है कि वो बैन अल-अक़वामी ओलंपिक IOC पर जोर दे कि वो बैन अल-अक़वामी सतह पर इस तरह की तब्दीली करे और اہمیت کا تعین جنس کے مطابق کرے نہ کہ صنفی شناخت یا ٹیسٹوسٹیرون میں کمی کے مطابق۔ کل امریکہ میں لڑکیوں اور خواتین کے کھیلوں سے متعلق قومی دن کے موقع پر اس حکم نامے پر دستخط کیے گئے۔ ارجنٹینا نے عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ اے سے الگ ہونے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ صدر جیویئر ملئی کے ایک ترجمان نے کہا کہ صحت کے بندوبست سے متعلق خاص طور پر کووڈ 19 کے دوران پیدا ہوئے شدید اختلاف کی وجہ سے ڈبلیو ایچ او سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں قانون نافذ کرنے والوں کی موجودگی میں کل رات مشتعل ہجوم نے بانگ بندھو میموریل میوزیم کو بلڈوزروں کے ذریعے ڈھا دیا۔ دھن منڈی 32 میوزیم بنگلہ دیش کے بانی صدر اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کی ذاتی رہائش گاہ تھی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج سہپہر مہاراشٹر کے ناگپور میں ودربھ کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ہی ٹیمیں اس مہینے کے آخر میں کھیلی جانے والی چیمپئنز ٹرافی میں سے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں اپنی صلاحیت اور کارکردگی کا تجربہ کریں گی۔ عالمی ٹیبل ٹینس سنگاپور اسمیش میں آج کوارٹر فائنل میں مانو ٹھکر اور منو شاہ پر مشتمل بھارت کی نمبر 1 مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا سامنا فرانس کی جوڑی سے ہوگا۔ یہ میچ آج بھارتی وقت کے مطابق سہپہر 3:30 بجے کھیلا جائے گا۔ بھارتی جوڑی وین چونگ ٹنگ اور یی کیوان ٹو پر مشتمل ہانگ کانگ کی جوڑی کو 3-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے۔ پرنس رحیم الحسینی کو ان کے والد کی وفات کے بعد دنیا بھر میں موجود اسماعیلیہ فرقے کے لاکھوں مسلمانوں کا روحانی پیشوا یعنی نیا آغا خان نامزد کیا گیا ہے۔ 53 سالہ پرنس رحیم الحسینی جنہیں اپنے والد کی وصیت میں آغا خان پنجم نامزد کیا گیا ہے اسماعیلیوں کے 50ویں موروثی امام بن گئے ہیں۔ رحیم الحسینی کے والد آغا خان چہارم اور عرب پتی انسان دوست مخیر کریم الحسینی منگل کو 88 سال کی عمر میں پرتگال میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسماعیلیہ فرقے کے لاکھوں مسلمانوں کے امام پرنس کریم آغا خان چہارم کے انتقال پر کل رنج و غم کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ پرنس آغا خان ایسے دور اندیش شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی خدمات اور روحانیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ صحت، تعلیم، دیہی ترقی اور خواتین کو با اختیار بنانے جیسے شعبوں میں پرنس کریم آغا خان چہارم کی خدمات لوگوں کو تحریک دیتی رہے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ آغا خان کے ساتھ اپنی ملاقات کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیراعظم نے ان کے خاندان کے افراد اور دنیا بھر میں لاکھوں معتقدین اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے دلی اسمبلی انتخابات سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، الیکشن پرامن طور پر مکمل، 60% سے زیادہ پولنگ۔ اخبار انقلاب نے دلی اسمبلی انتخابات کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے ملکی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار پرتاب نے وزیر داخلہ امیت شاہ کی اس ہدایت کو اپنی سرخی بنایا ہے کہ جموں کشمیر میں سیکیورٹی ایجنسیاں دراندازی روکیں اور دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے ذریعے مدھیہ پردیش میں واٹر شیڈ یاترا شروع کیے جانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، واٹر شیڈ یاترا زمین کو بچانے کی یاترا۔ اخبارات نے سویڈن کے اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد کی ہلاکت کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ اخبارات کی دیگر بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی امریکی صدر کی دھمکی پر عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ دلی اسمبلی انتخابات میں 60% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی، ووٹوں کی گنتی ہفتے کے روز کی جائے گی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اب پورا شمال مشرق خطہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پریاگ راج کے مہاکمبھ میں جن جاتی سانسکرتک سماگم 2025 آج سے شروع ہو رہا ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں بدھ کے روز حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی، جس کے بعد 2025 کے بجٹ کو اپنانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ناگپور میں کھیلا جائے گا۔ اور عالمی ٹیبل ٹینس سنگاپور اسمیش میں آج کوارٹر فائنل میں مانو ٹھکر اور منو شاہ پر مشتمل بھارت کے مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا سامنا فرانس کی جوڑی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔